नबूकदनेज़र का मूर्ति का स्वप्न। अध्याय दो। राजा विद्वानों से पूछताछ करता है। अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष नबूकदनेज़र ने स्वप्न देखे, जिनके कारण वो इतना घबरा उठा कि उसकी नींद जाती रही। तब राजा ने अपने स्वप्नों का अर्थ बतलाने के लिए जादूगरों, ओझाओं, तांत्रिकों एवं खलदइयों को बुला भेजा। वे आकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने उनसे कहा, मैंने स्वप्न देखा है और मैं उसे समझने को बहुत व्याकुल हूं। खलदइयों ने राजा से कहा, महाराज चिरायु हूं, अपने दासों से अपना स्वप्न कहें जिससे हम उसका अर्थ लगा सकें। राजा ने खलदइयों को उत्तर दिया, मेरा वचन अटल है, यदि तुम लोग मेरा स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुम्हारे अंग अंग काट दिए जाएंगे और तुम्हारे घर तबाह कर दिए जाएंगे, किंतु स्वप्न और उसका अर्थ बतला दोगे तो मैं तुम लोगों को उपहार, पुरस्कार तथा भारी सम्मान दूंगा, इसलिए मुझे स्वप्न और उसका अर्थ बताओ। उन लोगों ने फिर निवेदन किया, महाराज अपने दासों को ये बताएं कि स्वप्न क्या था, तो हम लोग उसका अर्थ लगाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, ये स्पष्ट है कि तुम लोग टाल मटोल कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा वचन अटल है। यदि तुम मेरे स्वप्न का अर्थ मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्राण दंड निश्चित है। तुम लोगों ने तब तक के लिए मुझसे झूठ और मिथ्या बातें कहने का समझौता कर लिया है जब तक कि समय न बदल जाए, इसलिए पहले मुझे स्वप्न बताओ जिससे मैं ये जान जाऊंगा कि तुम उसका अर्थ बता सकोगे। खलदइयों ने राजा को उत्तर दिया, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो राजा की ये मांग पूरी कर सके। किसी भी महाप्रतापी राजा ने किसी जादूगर, ओझा या खलदई से कभी ऐसी मांग नहीं की है। आप कठिन से कठिन बात पूछ रहे हैं। राजा की ये बात उन देवताओं के सिवा जो शरीरधारियों के लोक में नहीं रहते और कोई नहीं बता सकता। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने बाबुल के सभी विद्वानों को मार डालने की आज्ञा निकाली। अतः जब ये आज्ञा निकली कि सभी विद्वानों का वध कर दिया जाए, उन्होंने वध करने के लिए दानियल और उसके साथियों को ढूंढ निकाला। दानियल की विद्या। जब राजा के अंगरक्षकों का नायक अर्योक विद्वानों को मार डालने के लिए तैयारी कर रहा था, तब दानियल नायक के पास आया और बड़ी सूझबूझ से परामर्श करके बोला, राजा ने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों निकाली है? इस पर अर्योक ने दानियल को सारी बातें बता दी। तब राजा के पास जाकर दानियल ने यह प्रार्थना की कि मुझे समय दीजिए और मैं स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। इसके बाद दानियल ने अपने घर जाकर ये बात अपने साथी हनन्या, मीशाएल और अजर्या से बताई। उसने ये भी कहा कि हम ये भेद जानने के लिए स्वर्ग में विराजमान ईश्वर से दया की प्रार्थना करें, जिससे बाबुल के अन्य विद्वानों के साथ हम भी नष्ट न हो जाएं। तब रात के समय दिव्य दर्शन के द्वारा दानियल के सामने भेद खुल गया और वो इस प्रकार स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का गुणगान करने लगा, ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है, प्रज्ञा और शक्ति उसी की है, काल और ऋतु उसी के हाथ में है, वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उलटता है, वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ, वही गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है, वही अंधकार में छिपे भेद जानता है, क्योंकि उसमें ज्योति का निवास है। हमारे पूर्वजों के ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा यश गाता हूं, क्योंकि तूने मुझे प्रज्ञा और शक्ति प्रदान की है। जो हमने मांगा है तूने उसे प्रकट किया है और राजा का भेद हमें बता दिया है। तब दानियल अर्योक के पास गया, जिसको राजा ने बाबुल के विद्वानों को मार डालने का आदेश दिया था। दानियल उसे बोला, बाबुल के विद्वानों का वध नहीं कीजिए, मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं राजा को स्वप्न का अर्थ बतला दूंगा। अतः दानियल को शीघ्र ही राजा के पास ले जाकर अर्योक ने उससे कहा, मुझे यूदा से निर्वासितों में एक मनुष्य मिला है जो राजा के स्वप्न का अर्थ बता सकता है। दानियल से, जिसका नाम बेल्टशस्सर हो गया था, राजा ने पूछा, मैंने जो स्वप्न देखा है क्या तुम मुझे उसे बताकर उसका अर्थ भी लगा सकते हो? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछ रहे हैं उसका न तो कोई विद्वान, न ही कोई ओझा, न कोई जादूगर और न ही कोई ज्योतिषी उद्घाटन कर सकता है, किंतु स्वर्ग में विराजमान ईश्वर रहस्यमय दर्शन देता है और उसी ने राजा नबूकदनेज़र पर इस युग के अंत में होने वाली घटनाएं प्रकट की हैं। आपका स्वप्न और नींद में देखे गए दर्शन इस प्रकार हैं। राजा, जब आप शैया पर पड़े हुए थे तो आपके मन में यह विचार आया कि भविष्य में क्या होगा, और जो रहस्यों को प्रकट करता है उसने आप पर भविष्य प्रकट किया है। मुझ पर ये रहस्य इसलिए नहीं प्रकट किया गया है कि मैं अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, बल्कि इसलिए कि मैं राजा को उसका अर्थ बतलाकर आपके मन के विचारों को समझा दूं। राजा, आपने ये दिव्य दृश्य देखा, एक विशाल दिव्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वो समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। ये था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजत्व, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, विचाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही हैं। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वो आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा, और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा, जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वो राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशतः मिट्टी के और अंशतः लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशतः लोहे और अंशतः मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वो इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा पीतल मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। राजा का विश्वास। यह सुनकर राजा नबूकदनेज़र ने मुंह के बल गिरकर दानियल की पूजा की और आदेश दिया कि उसके सामने नैवेद्य और धूप चढ़ाई जाए। राजा ने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर सचमुच सभी देवताओं का प्रभु और सभी राजाओं का स्वामी है। वही सब रहस्यों को प्रकट करता है, क्योंकि ये रहस्य केवल तुम प्रकट कर सके। तब राजा ने उच्च पद पर दानियल को नियुक्त कर उसे अनेक बहुमूल्य उपहार दिए और उसे बाबुल के समस्त प्रांत का शासक बना दिया तथा बाबुल के विद्वानों का अध्यक्ष नियुक्त किया। यही नहीं, दानियल के अनुरोध पर राजा ने बाबुल प्रांत के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए शद्रक मेशक और अबेदनगो को नियुक्त किया। दानियल राज दरबार में ही रह गया।